डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:17 ईसा 34 से 35 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 17 यशाया अध्याय 34 और 35 है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब शुरुआत करने का समय आ गया है। यदि आप आज शाम या हाल ही में पहली बार आए हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप टेबल पर रखी शीटों में से किसी एक पर अपना नाम और कम से कम अपना ईमेल पता इस तरह से हस्ताक्षरित करें। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम आपको सदस्यता सूची में डाल सकें, बल्कि यह सिर्फ इसलिए है ताकि हम आपको शेड्यूल या उस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में सूचित कर सकें। इसलिए यदि आपने अपना नाम हस्ताक्षरित नहीं किया है, यदि आप हमें अपना डाक पता देना चाहते हैं तो यह अद्भुत है, लेकिन कम से कम आपका ईमेल पता बहुत अच्छा होगा। याद रखें, हम अगले सप्ताह नहीं मिल रहे हैं। अगले सप्ताह एक सप्ताह की छुट्टी है और वह फ्री मेथोडिस्ट रिवाइवल का सप्ताह है, इसलिए हो सकता है कि आप अगले सोमवार की रात को उन सेवाओं का हिस्सा बनना चाहें। तो अगले सोमवार की रात को छुट्टी और फिर जहां तक हम जानते हैं सीधे जून में किसी समय जब हम यह किताब खत्म कर लेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु कि हर परिवर्तन के दौरान आप वैसे ही बने रहते हैं। धन्यवाद कि आपकी निरंतर अपरिवर्तनीय इच्छा अपने लोगों को आशीर्वाद देने की है। जब हम आप पर परिवर्तनशीलता का आरोप लगाते हैं तो हमें क्षमा करें, जबकि वास्तव में यह हमारी परिवर्तनशीलता ही है जिसने आपको वह करने से रोका है जो आप हमारे लिए और हम में करना चाहते हैं। हमारी मदद करो प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है ताकि हम आपका जीवन जी सकें, कि हम आपके लोग बन सकें। धन्यवाद कि आपने हमें मार्गदर्शक, चार्ट और कंपास के रूप में अपना शब्द दिया है जैसा कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज शाम आप फिर से हमारी मदद करेंगे जैसे आप करते आए हैं। आज रात हम सभी के जीवन में इस प्राचीन शब्द को जीवंत बनाएं। आइए यहां मौजूद विरोधाभासों को देखें और सही विकल्प चुनें। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। हम उस लंबे खंड को निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं जिस पर हम कई हफ्तों से काम कर रहे हैं। वह अध्याय 13 से 35 तक है। क्या किसी को याद है हमने इस अनुभाग को क्या नाम दिया है? भरोसे में सबक। बिल्कुल, भरोसे में सबक। विश्वास का विषय इस पूरे खंड में बार बार दिखाई देता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यह दोनों तरफ से घिरा हुआ है। सबसे पहले अध्याय 7 से 12 कोई भरोसा नहीं, और हम अगले सप्ताह की शुरुआत 36 से 39 के साथ करने जा रहे हैं जिसे मैंने ट्रस्ट का नाम दिया है। हाँ, लेकिन तो इन दोनों के बीच हम विश्वास के इन पाठों को देख रहे हैं। हमने अध्याय 13 से 23 में देखा कि राष्ट्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अध्याय 24 से 27 तक हमने देखा कि कैसे यहोवा इतिहास के मंच पर सर्वोच्च अभिनेता है। अध्याय 28 से 33 में हमने पिछले सप्ताह निष्कर्ष निकाला था, धिक्कार है उन लोगों पर जो प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और हमने इस तथ्य के बारे में काफी चर्चा की है कि पुराने नियम में प्रतीक्षा विश्वास का पर्याय है। तो फिर वह विषय कि यदि आप भगवान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो भगवान को आपके लिए इंतजार करना होगा। वह तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता यदि वास्तव में तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे। फिर हम आज रात देखेंगे कि मेरा मानना है कि इस खंड का निष्कर्ष क्या है। दोनों के बीच एक नाटकीय विरोधाभास द्वारा चिह्नित दो अध्याय का निष्कर्ष। और मुझे लगता है कि इन दो अध्यायों में हम जो देख रहे हैं वह वास्तव में विकल्पों का परिणाम है। अगर हम राष्ट्रों पर भरोसा करना चुनते हैं, अगर हम मानवता पर भरोसा करना चुनते हैं, तो वास्तव में हमें एक परिणाम मिलेगा, और यही हम अध्याय 34 में देख रहे हैं। जब तुम पहली चार आयतों को देखो तो हे राष्ट्रों, सुनने के लिए निकट आओ, हे लोगों ध्यान लगाओ। प्रेवी और जो कुछ उसमें भरता है, जगत और जो कुछ उससे उत्पन्न होता है, सब सुने, क्योंकि यहोवा सब जातियों पर क्रोधित है और उनकी सब सेनाओं पर क्रोधित है। उसने उन्हें विनाश के लिए समर्पित कर दिया है और वध के लिए सौंप दिया है। उनके मारे हुए लोग बाहर फेंक दिए जाएंगे, उनकी लोथों से दुर्गंध उठेगी, उनके खून से पहाड़ बहेंगे, आकाश की सारी सेना सड़ जाएगी और आकाश पुस्तक की नाई लुढ़क जाएगा। उनके सारे दल उसी प्रकार गिर जाएंगे जैसे बेल से पत्तियां झड़ती हैं। अब मैं आपसे इसकी तुलना 13:16 से करने के लिए कहता हूं। क्या कोई ऐसा करता है? वहां का न्याय बेबीलोन के विरुद्ध है। भाषा के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, यह बिल्कुल मिलती जुलती भाषा है। यहां पद 4 से आरंभ हो रहा है। पहाड़ों पर बड़ी भीड़ की तरह कोलाहल की आवाज आ रही है। राज्यों के, राष्ट्रों के एक साथ एकत्र होने के कोलाहल का शब्द। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए सेना इकट्ठा कर रहा है। वे दूर देश से, स्वर्ग के अंत से आते हैं। भगवान और उनके क्रोध के हथियार पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। विलाप करो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश के रूप में यह आएगा। इसके आगे तो यह बहुत ही समान भाषा है, वह भाषा जिससे हमने अध्याय 13 में शुरुआत की थी, और अब यहां हम वही भाषा 34 में फिर से उठा रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर, दुनिया पर भगवान का फैसला। तब वह क्या कह सकता है? वह आवरण, यह बीच में आने वाले भरोसे के सबक के बारे में क्या कह सकता है? बेहतर होगा कि आप उन पर विश्वास करें। हाँ, प्रभु पर भरोसा रखो और राष्ट्रों से मत डरो। प्रभु पर भरोसा रखो और राष्ट्रों से मत डरो। हाँ, वह पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए निकला है। वह पूरी दुनिया को छुड़ाने के लिए निकला है, और सारा संसार भी न्याय का भागी है। हाँ, हाँ, ठीक है। श्लोक 4, वहां स्वर्ग के यजमान के बारे में कौन सी दो बातें कही गई हैं? स्वर्ग के मेजबान शब्द में कौन से दो संदर्भ शामिल हैं? सितारे उनमें से एक हैं। हाँ, और बुतपरस्तों के लिए सितारे क्या दर्शाते हैं? भगवान। हाँ, हाँ, इसलिए जब बाइबल आकाश के तारों के गिरने के बारे में बात करती है तो यह मुख्य रूप से एक भौतिक विवरण नहीं हो सकता है। यह वास्तव में झूठे धर्म के बारे में एक बयान हो सकता है। भगवान, ठीक है, तो वहां उन दो चीजों की बात हो रही है, भौतिक तारे और देवता। फिर आपके पास होस्ट का तीसरा उपयोग भी है, यह यहां निहित हो सकता है। 13 में यह निश्चित रूप से था। होस्ट का अन्य संदर्भ क्या है? सही, स्वर्ग की सेनाओं का स्वामी, देवदूत। तो स्वर्ग के मेजबान के किसी भी संदर्भ में वे सभी तीन संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। अब भगवान देवताओं के प्रति इतना हिंसक क्यों है? और मैं यहां शीट पर जो प्रश्न पूछता हूं वह यह है कि मूर्ति पूजा हमारे जीवन को भ्रष्ट क्यों करती है? ठीक है, हम देवताओं को अपनी छवि में बना रहे हैं, हम देवता को कम कर रहे हैं, हम देवत्व को अपने ही मॉडल में कम कर रहे हैं। जब आप अपनी छवि में एक भगवान बनाते हैं तो आपको किस तरह का भगवान मिलता है? बेकार, असत्य, हम कैसे हैं? ठीक है, हम धोखा खा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम उन्हें बना सकते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। और सदियों से मनुष्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? पतनशील, बिल्कुल, बिल्कुल, हम देवता हैं। कित हो सकता है? 13 में यह निश्चित रूप से था। देवता हम हैं। तो भगवान मानवता लिखित बड़े हैं। खराब व्याकरण के लिए क्षमा करें, लेकिन वे हमसे बेहतर हैं, लेकिन वे हमसे खराब भी हैं। वे हमसे ज्यादा सच्चे हैं, लेकिन वे हमसे झूठे भी हैं। मानवता जो कुछ भी है, देवता उससे भी बड़े हैं। इन सब का तात्पर्य असंगतता, मनमानी, अविश्वसनीयता से है। अब वहां पहले बिंदु पर ध्यान दे जो मैंने पृष्ठभूमि के अंतर्गत रखा था। 34.2 में यह कहा गया है, उसने उन्हें राष्ट्रों और उनके मेजबान को समर्पित कर दिया है। उसने उन्हें विनाश के लिए समर्पित कर दिया है। पुराने नियम में यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह हराम शब्द है। रफ एच फिर से हराम। और यह विचार है कि कोई चीज पूरी तरह से भगवान को दी जाती है और उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। अब एक ऐसा अर्थ है जिसमें बिल्कुल यही मतलब है, लेकिन ये अलग है। यह वह स्थिति है जहां भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि इसे नष्ट करने के लिए इसे ईश्वर को सौंप दिया जाना चाहिए। यह वह शब्द है जो कनानियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और यही वह विचार है। यह सिर्फ एक तरह का कत्लेआम नहीं है। यह विचार है कि उसे कुछ देना होगा। यही कारण है कि इब्रियों को जेरिको की लूट को छूने से मना किया गया था। जेरिको परमेश्वर के लिए बलिदान बन गया है, और इसमें से कुछ भी अपने लिए लेना उससे भ्रष्ट होना है। अब यह दिलचस्प है। यह एक अच्छा सेमिटिक शब्द है और एक अरबी संज्ञेय है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक हराम, ये महिलाएं उस राजा काल की हैं और कोई भी उन्हें छू नहीं सकता, अन्यथा वे बुरी बुरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन यहां यह है, भगवान संसार से कह रहे हैं, संसार इतना भ्रष्ट हो गया है कि सारा संसार ही अपना बलिदान बन गया है। बेशक अच्छी खबर यह है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे स्थान पर बलिदान देने आए हैं। लेकिन यीशु के अलावा एकमात्र विकल्प विनाश को समर्पित है। हमने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। ठीक है, 34:1-4, विश्व 34:5-10, हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं? एदोम। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1:4 और 5:10 के बीच साहित्यिक संबंध क्या है? अच्छा, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशेष तक। तो यहां सार्वभौमिक विनाश का एक सामान्य कथन है, और अब आप एक उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करें। यह वही चीज है जो अध्याय 13 में घटित हुई थी। श्लोक 1-16 सार्वभौमिक विनाश का एक सामान्य कथन था। 17 और उसके बाद बाबुल का एक विशेष कथन जो जाति जाति का गौरव है। आपको क्या लगता है यशाया ऐसा क्यों करता है? वह दोनों ही मामलों में एक सामान्य बयान से शुरुआत क्यों करता है और फिर किसी विशेष बयान की ओर क्यों बढ़ता है? ठीक है, जो पहले आता है उसका एक विशिष्ट उदाहरण। एक उदाहरण का उपयोग करने का क्या महत्व है? ठीक है, हाँ हाँ, कभी कभी ओह ठीक है, यह एक तरह की दुनिया है, कुछ बड़ी और अस्पष्ट और बाहर। तो यह ध्यान केंद्रित करने जैसा है। आपको व्यापक कोण मिल गया है और अब आप इसे नीचे लाते हैं और एक विशेष राष्ट्र को देखते हुए इसमें यही शामिल है। बेबीलोन की महिमा नष्ट होने वाली है। अब यहाँ एक और तरह का सामान्यीकरण विशेषीकरण चल रहा है। बेबीलोन उत्तर और पूर्व से दूर एक महान महान देश है। एदोम क्या है? दक्षिण के ठीक बगल में एक छोटा सा पड़ोसी देश। अर्थ सही अर्थों में विनाश पर और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। आप एदोम और इसराइल के लोगों के साथ उसके संबंध के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, उनमें कभी मेल नहीं हुआ। नंबर एक, कब और निःसंदेह आपको इसे बहुत पीछे ले जाना होगा, एदोम का पिता कौन है? एसाव। तो यह वहां तक वापस चला जाता है। जब परमेश्वर लोगों को मिस्र से बाहर ला रहा था और उन्हें वादा किए गए देश में ले जा रहा था, तो मूसा ने एदोम के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति मांगी। याद रखें, एदोम मृत सागर है, विश्वास करें या न करें, और एदोम यहाँ मृत सागर के दक्षिणी छोर के आसपास स्थित है। बहुत बहुत बंजर देश, लेकिन किंग्स हाईवे और ग्रेट कोस्टल हाईवे के बीच महत्वपूर्ण संपर्क यहीं से होकर गुजरता है। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यापार कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों को पेट्रा शहर याद है। एदोमियों के नष्ट होने और उनका सफाया हो जाने के बाद अरब नबातियन वहां चले आए और लगभग इसी जंक्शन पर पेट्रा शहर का निर्माण किया। तो सबसे पहले इज़राइल के लोग यहां आ रहे हैं। वे जेरिको तक जाने के लिए एदोम से होकर जाना चाहते हैं और वे कहते हैं, हम अपना भोजन स्वयं उपलब्ध कराएंगे, हम अपना पानी भी स्वयं ले जाएंगे। और एदोमी कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, यदि तुम जा रहे हो तो बाहर जाओ। और जब वे जा रहे हैं, एदोमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। संसार में ईश्वर के प्रेम के प्रवाह को रोकना बहुत खतरनाक है। भगवान इस समूह के माध्यम से दुनिया को बचाने जा रहे हैं। अब यह सोचना काफी चौंकाने वाला है कि इस झुंड का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यह भगवान की योजना है, इसलिए वे हर समय हमला कर रहे हैं। तो यह नंबर एक है, यात्रा करने की कोई अनुमति नहीं। क्या कोई किसी और चीज के बारे में सोचता है? मुझे लगता है कि आपने हाल ही में ओबद्याह में अपनी भक्ति नहीं देखी है। ओबा कौन? वह बिल्कुल बाइबल की एक किताब है। जब बेबीलोन यरूशलेम को नष्ट कर रहा था, तब एदोम ने बेबीलोनियों की सहायता की। जब यहूदी भाग निकले तो एदोमियों ने उन्हें पकड़ लिया और बेबीलोनियों को वापस दे दिया। और ओबद्याह के पास एदोमियों के बारे में कुछ बहुत कड़े शब्द हैं। क्या वे अपने विनाश पर नहीं हंसे? हाँ हाँ हाँ, इसलिए उन्होंने विनाश में सहायता की। और मलाकी ने परमेश्वर के लिए यह कहकर आरंभ किया, ओह मैंने तुझसे कैसा प्रेम रखा है। और लोग जवाब देते हैं, ओह तुमने हमसे कैसा प्रेम किया है। यह निर्वासन से वापसी के बाद की बात है। यदि आप हमसे प्यार करते तो हमारे पास एक ऐसा मंदिर होता जो पुराने सोलोमोनिक मंदिर से भी बड़ा होता, न कि यह छोटा सा मंदिर जो हमें मिला है। यदि तुम हमसे प्रेम करते तो मसीहा पहले ही आ गया होता। यदि आप हमसे प्यार करते तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? भगवान हाँ कहते हैं। अपनी तुलना एदोम से करो। एदोम बंधुवाई से कभी वापस नहीं आएगा। आप वापस आ गए हैं। क्या मैं आपसे प्यार करता हूँ? और वास्तव में वह पूरा हुआ। ऐतिहासिक एदोमी कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने सोचा कि बेबीलोनियों की मदद करके उन्हें पास मिल जाएगा। जब आप बेबीलोन के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं करते। और एदोमियों को बेबीलोनियों ने नष्ट कर दिया और वे कभी वापस नहीं लौटे। जैसा कि मैंने कहा, जो लोग वहां चले आए वे नबातियन थे। अब रोम ने इस क्षेत्र को इदुमिया कहा और हेरोदेस महान उसके पिता एक इदुमियन थे और उसकी मां एक यहूदी थी। और निःसंदेह इससे उसे यहूदी लोगों के साथ कोई अंक नहीं मिला। लेकिन यहां यह है, तो फिर एदोम किसका प्रतीक है? सभी राष्ट्र और पाप। हाँ, क्या हम इससे अधिक स्पष्ट हो सकते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की योजना से शत्रुता। अंत में यही विश्व विनाश होता है। अगर हम कहें नहीं, मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम जो कर रहे हो उसे मैं रोकने का प्रयास करूंगा, यह सचमुच सचमुच खतरनाक है। अब पद 8 को देखें। यहोवा के पास सियोन के लिए पलटा लेने का एक दिन और प्रतिफल का एक वर्ष है। इस प्रकार का कथन यशायाह की पुस्तक में नियमित रूप से पाया जाता है। हम उन दो शब्दों को पर्यायवाची के रूप में देखते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। मेरे साथ जो किया गया उसका बदला लेने का अर्थ है मैं स्वयं को वापस पाना। किसी दूसरे ने किसी दूसरे के साथ जो किया उसका प्रतिशोध प्रतिशोध है। तो यह कथन यशायाह के माध्यम से चल रहा है, ईश्वर प्रतिशोध लेगा। यदि हमें ठेस पहुंची है और ठेस पहुंची है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? भगवान इसका ख्याल रखेंगे। हमें नहीं करना है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, सटीक सटीक। हम नहीं जानते कि ईश्वर पुस्तकों को कैसे संतुलित करेगा, लेकिन वह ऐसा करेगा। नहीं, जब यह सही हो तो यह हमारा काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब है बिल्कुल जैसा कि जॉन ने कहा, हम आजादी में रह सकते हैं, हमें अपनी खुद की चीज वापस पाने की जरूरत नहीं है, हम इसे जाने दे सकते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम तुरंत पुनर्भुगतान देखना चाहते हैं। हम अभी किताबों को संतुलित देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तुमने मेरे मन की बात कह दी। यह भरोसे की बात है। क्या मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि वह अपने समय और अपने तरीके से इस स्थिति का ख्याल रखेगा और मैं चुकाऊंगा? यह वास्तव में यशायाह की ओर से है और इसे पॉल ने रोमन में उद्धृत किया है। क्या दुनिया अक्सर इसका दुरुपयोग नहीं करती? आप लोगों को बातें कहते हुए सुनते हैं और यह ऐसा है जैसे हमारे पास एक प्रतिशोधी भगवान है, लेकिन यह एक प्रतिशोधी भगवान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यह कोई प्रतिशोधी भगवान नहीं है। मैं उसे पाने जा रहा हूँ, मैं उसे पाने जा रहा हूँ, मैं उसे पाने जा रहा हूँ। यह न्याय का देवता है जो कहता है, तुम उस असहाय व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते और बच नहीं सकते, क्योंकि मैं भगवान हूँ। इसका एक उदाहरण शाऊल के साथ गुफा में डेविड होगा, शाऊल के साथ गुफा में दाऊद। उसे अपना खुद का वापस पाने की जरूरत नहीं थी। शाऊल वर्षों से उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसकी जान को खतरा था। और मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ, मैंने समय समय पर इसका उपयोग किया है, खासकर युवा लोगों के साथ बातचीत में, सिर्फ इसलिए कि एक दरवाजा आपके लिए खुला है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसके माध्यम से जाना चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, खैर परिस्थितियां इसे निर्धारित करती हैं। भगवान ने मेरे लिए दरवाजा खोला, इसलिए मैंने उसे मार डाला। डेविड यह बात बहुत आसानी से कह सकता था। उसके जनों ने कहा, परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। और दाऊद कहता है, हूप 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 हूप, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मैं कहूंगा, भगवान ने इस आदमी पर अपना हाथ रखा है, मैं इसकी देखभाल भगवान पर छोड़ दूंगा। हाँ, मुझे लगता है डेविड के पास कई अच्छे पल हैं, लेकिन वे दो घटनाएं निश्चित रूप से उसके चरित्र के मामले में शीर्ष के करीब हैं। एक अर्थ में, जब हम ईश्वर की प्रतिशोध की भूमिका लेते हैं, तो क्या हम मूर्ति पूजक नहीं बन जाते? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि फिर हम ऐसा करने के लिए भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन दुखद पक्ष में यह वैसा ही है। ओह हाँ, ओह हाँ हाँ, यह वह त्रासदी है जो मध्य पूर्व में घटित हो रही है। वहां एक पैटर्न है। तुम मेरी उंगली तोड़ दो, मैं तुम्हारी कलाई तोड़ दूंगा। तुम मेरी कलाई तोड़ दो, मैं तुम्हारी बांह तोड़ दूंगा। तुम मेरी बांह तोड़ दो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम मेरी गर्दन तोड़ दो, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तुम मेरा सिर फोड़ दो, मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। तुम मेरे परिवार को मार डालो, मैं तुम्हारे राष्ट्र को मिटा दूंगा। बदला लेने का चक्र। और ईसाई धर्म का महान सत्य अपने शत्रु से प्रेम करना है। मैंने आज एक चीज पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा, विश्वास और विश्वास के बारे में। हम चाहते हैं कि यह गणित जैसा हो। 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वह पूर्णता है, तो कोई विश्वास नहीं है। इसलिए यदि हम यही हैं, तो हम इसे स्वयं कर रहे हैं, और विश्वास वाला भाग, जब कोई उत्तर नहीं है, तो यह पूर्ण है, या कम से कम वह उत्तर नहीं जिसकी हमें अपेक्षा थी। हाँ हाँ, अगर हम सिर्फ यह दावा करते हैं कि 2 और 2 कुछ भी है, तो हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, भरोसा करने के बजाय जब हमारे लिए कोई पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ 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 हाँ, आपने खुले दरवाजे के बारे में कुछ कहा, तो फिर बुद्धिमान सलाह देने का इससे बेहतर तरीका क्या है? कोई आपके पास आएगा और कहेगा, मैं बस भगवान की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान मुझे अपनी इच्छा दिखाएं। यह कहने की प्रवृत्ति है, ठीक है, भगवान को आपके लिए दरवाजे खोलने दें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यह जोखिम भरा हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है, ठीक है, नहीं, मुझे लगता है कि भगवान स्पष्ट रूप से दरवाजे खोलते हैं। मुद्दा यह है कि सिर्फ इसलिए कि दरवाजा खुल गया है, क्या वहां समझौते के तत्व मौजूद हैं? क्या वहां ऐसे तत्व हैं जो वास्तव में, इसे कैसे कहें, जो आपको छोटा करते हैं? क्योंकि डेविड ने यही किया होगा, उसने खुद को छोटा कर लिया होगा, उसने छोटे आदमी का रास्ता पकड़ लिया होगा। यहां मेरा मौका है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न हमें खुद से पूछने होंगे कि उस दरवाजे से मेरे लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए क्या होगा, ईश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। ठीक है, आइए यहां आगे बढ़े, आइए नीचे कूदें। आप यहां वह कविता देखें जो वास्तव में श्लोक 9 से शुरू होती है, जो अध्याय के अंत तक जाती है। कल्पना में इस प्रकार की अतिशयता का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है उसके ऐसा करने का क्या कारण है? खैर, सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे यह कहना चाहिए कि कल्पना क्या बताती है। खराब? हाँ, मैं उससे सहमत होऊंगा। ठीक है, उजाड़, विनाश, आग, क्या आग, आग, सभी जानवरों के बारे में क्या? ठीक है, मैला ढोने वाले, इनमें अन्य कौन सी बातें समान हैं? मैं वह खरीदूंगा, वे बदसूरत हैं, वे अशुद्ध हैं, वे मानव अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वे मानव अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वे मानव अस्तित्व के दुश्मन हैं। अच्छी बात है, यहाँ कोई गायें नहीं हैं, यहाँ कोई घोड़े नहीं हैं, कोई कुत्ते नहीं हैं, कोई बिल्लियां नहीं हैं, इनमें से कोई भी चीज जानवर नहीं है जो मानव जीवन में योगदान करता नहीं तो कम से कम मानव जीवन में भागीदार तो नहीं है। नहीं, वे बेकार हैं, वे शिकार हैं, शिकार के जानवर। हाँ हाँ, तो यह सब किस बारे में कह रहा है? अगर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करना चुनता हूँ तो मैं खुद को किसके लिए खोल रहा हूँ? अव्यवस्था, अनुत्पादकता, यह जंगल में होगा, जंगली इलाका, आत्मविनाश, आत्मविनाश, शिकार करना, महम्मा और प्रार्थना नहीं, पूर्ण विनाश की स्थिति। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आदम और हव्वा को दिया गया आदेश पूरा नहीं किया गया है। धरती पर खेती करो। अब कई बार पर्यावरणविदों ने इसका उपयोग किया है। अरे हाँ हाँ, यह ईसाई धर्म ही है जो पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण विनाश का कारण है, जिसके बारे में मैं आदरपूर्वक कहता हूँ बकवास। यह नहीं कहता कि आपको फर्नीचर में अपने नाम के पहले अक्षर उकेरने का अधिकार है। यह क्या कहता है कि आपको विश्वपति की जिम्मेदारी दी गई है। अब फिर, आजकल पति एक बुरा शब्द है। जोतने के लिए, इसे इसकी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ऐसा नहीं हुआ है। यह प्रकृति का आपाधापी है, यह प्रकृति का सबसे बुरा रूप है, यह प्रकृति है जो गिर गई है। और यशायाह कह रहा है कि यदि आप राष्ट्रों पर भरोसा करना चुनते हैं तो यही वह दुनिया है जिसे आप चुनने जा रहे हैं। तो वास्तव में वह उन सभी पिछले अध्यायों को इस प्रकार के बिंदु पर ला रहा है। क्या यही वह दुनिया है जो आप चाहते हैं? यहीं से उन्होंने अध्याय 13 की शुरुआत की। हम यह सब पढ़ चुके हैं और अब वह इसे अंत में यहां ठोक रहा है। ठीक है, अब श्लोक 16 और 17 हमें छोड़ना होगा। ठीक है, आइए 35 की ओर चलें। मैं इसे चूकना नहीं चाहता। तो अध्याय 34 और अध्याय 35 के बीच क्या संबंध है? साहित्यिक संबंध, संक्रमण, अंतर, अंतर, नाटकीय विरोधाभास, जंगल के बीच और क्या? सियोन, सियोन, ठीक है, जंगल और बगीचा। हाँ, जंगल और बगीचे के बीच विरोधाभास। लेकिन अध्याय 35 के श्लोक 1 को देखें। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी किस बात की होगी? किस बात पर खुशी होगी? क्या गुल खिलने वाला है? जंगली इलाका, रेगिस्तान। यह सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ बगीचा है, बस इतना ही। यह हम में से हर एक है। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हम में से प्रत्येक ने एक रेगिस्तान चुना है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास रेगिस्तान होगा या बगीचा। सवाल यह है कि क्या आपके पास केवल रेगिस्तान ही रहेगा या आपका भगवान आपके रेगिस्तान को एक बगीचे में बदल देगा। जंगल और सूखी भूमि आनंदित होगी, रेगिस्तान आनंदित होगा और क्रोकस की तरह खिलेगा। वह बहुतायत से खिलेगा और खुशी और गायन के साथ आनंद मनाएगा। ध्यान दें कि दोनों अध्यायों के बीच एक मौखिक संबंध है। अध्याय 35 में श्लोक 7 के अंतिम भाग को देखें। अध्याय 34 के श्लोक 13 के अनुसार जंगल कैसा होने वाला था? गीद्रों का अड्डा। गीद्रों के आश्रय में, जहां वे बैठते हैं, घास नरकट और झाड़ियां बन जाएगी। ओह, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि भगवान आपके रेगिस्तान को ले सकते हैं और इसे एक बगीचे में बदल सकते हैं। वह आपके जीवन में वह स्थान ले सकता है जहां गीदड़ रहते हैं और इसे नरकटों और झाड़ियों का स्थान बना सकता है। यह सुसमाचार का शुभ समाचार है। ठीक है, हम यही दिव्य व्याख्या प्राप्त करने जा रहे हैं। श्लोक 2, इसके मध्य में आपको तीन स्थानों का उल्लेख मिलता है। तीन स्थान कौन से हैं? लेबनान, कार्मेल और शेरोन। ये उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। टायर और सिडोन के पीछे लेबनान के पहाड़ निस्संदेह प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े जंगल थे। माउंट कार्मेल आज के हाइफा के आधुनिक बंदरगाह के ऊपर भी हरे भरे विकास का स्थान था, क्योंकि भूमध्य सागर से आने वाले तूफान माउंट कार्मेल पर अपनी वर्षा गिराते थे। और फिर कार्मेल पर्वत की तलहटी में शेरोन का मैदान है, और वह फिर से एक समृद्ध हरा भरा स्थान था। तो वह उपयोग कर रहा है, और यशायाह की पुस्तक के माध्यम से वह इन तीनों का उपयोग उर्वरता, समृद्धि, विकास इत्यादि की छवियों के रूप में करता है। परंतु अब श्लोक 2 के अंत को देखो। अध्याय 6 श्लोक 3 कहता है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है। और आगे क्या आता है? स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण हैं। इसका यहां श्लोक 2 से क्या संबंध है? श्लोक 2 में अंतिम कथन, हाँ 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 हाँ, छुटकारा दिलाना फलदायी बनाना है और इसे देखने के लिए आंखें भी देना है। प्रभु की महिमा सर्वदा रही है, वे इसे देख ही नहीं सके, लेकिन अब छुटकारा पाने के लिए उस पर भरोसा करने के लाभों का अनुभव करने के लिए नई आंखें प्राप्त करना है। हर समय अपने चारों ओर भगवान की महिमा को देखने में सक्षम होना है। अक्सर मुद्दा यह नहीं होता कि वहां क्या है, मामला यह नहीं देख पा रहा है कि वहां क्या है, और परमेश्वर हमें इसे देखने में सक्षम बनाता है। क्या आपने कहानी सुनी है? लेकिन मैं यहां हूं, इसलिए मुझे इसे बताना होगा। दो छोटे लड़के, एक निराशावादी था, दूसरा आशावादी था, और वे बिल्कुल पूर्ण थे। वे जुड़वा थे, स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर बिल्कुल निरपेक्ष, और इसलिए मां उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गई और उसने उनके साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और उन्होंने कहा, ठीक है, स्पष्ट रूप से हमें यहां शॉक थेरेपी का उपयोग करना होगा। उसने कहा, ओह, आपका मतलब बिजली का झटका है? नहीं नहीं, हम यही करने जा रहे हैं। हम छोटे निराशावादी को खिलौनों से भरे कमरे में रखने जा रहे हैं। हर प्रकार के खिलौने के बारे में आप सोच सकते हैं, और जाहिर है इससे उसे पता चलेगा कि दुनिया कोई बुरी जगह नहीं है। और थोड़ा आशावादी, ठीक है, हम उसे घोड़े की खाद से भरे कमरे में रखने जा रहे हैं। इससे उसे यह दिखाना चाहिए कि सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा किया। कुछ घंटे बाद वे वापस चले गए। वे हॉल से नीचे छोटे निराशावादी की ओर गए और उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी। बस चिल्ला रहा है। उन्होंने दरवाजा खोला और बोले, क्या बात है? कोई आएगा और ये सारे खिलौने मुझसे ले जाएगा, ओ प्यारे। खैर, शायद दूसरे ने काम किया। जैसे ही वे हॉल से नीचे उस कमरे की ओर उतरे, उन्हें सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला। यहाँ बच्चे को कहीं एक पिचकारी मिल गई है और वह पागलों की तरह घोड़े की खाद फेंक रहा है और सीटी बजा रहा है। और वे कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? वह कहता है, यार इस घोड़े की खाद के साथ यहाँ कहीं न कहीं एक टट्टू होना ही चाहिए। तो आप चीजों को कैसे देखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और भगवान हमें उनकी महिमा देखने के लिए आंखें देते हैं, वह महिमा जो पृथ्वी में व्याप्त है, और अंधेरे घंटों में काम पर उसका हाथ देखने के लिए। मुक्ति का वादा क्यों करता है? खैर नहीं, हमें कुछ और बात करनी है। पद 5 को देखें। अध्याय 6 में क्या कहा गया कि यशायाह के उपदेश का तत्काल परिणाम क्या होगा? वे अंधे होंगे और वे बहरे होंगे। संदेश उन्हें अंधा और बहरा बना देगा। क्या ईश्वर चाहता है कि कहानी का अंत यही हो? नहीं नहीं नहीं, वह दिन आ रहा है। यशायाह यह भविष्य में 200 वर्षों तक उपलब्ध हो सकता है, परंतु वह दिन आ रहा है जब अंधे देखेंगे और बहरे सुनेंगे। यह भगवान की अंतिम योजना है, और यह तभी हासिल होगा जब यशायाह वफादार रहेगा। ठीक है। श्लोक 8। मुक्ति के वादे में एक राजमार्ग क्यों शामिल है? मुक्ति एक यात्रा है। मुक्ति ईश्वर के साथ चलना है। मैंने इसे पहले भी उद्धृत किया है, मैं इसे फिर से उद्धृत करूंगा। उत्पत्ति 17:1। इब्राहिम, मेरे आगे चल और सिद्ध बन, वही बनो जो तुम्हें बनाया गया है। आप वही बने जिसके लिए आप बने हैं। शब्द के सही अर्थों में पूरी तरह से वास्तव में मानव बने। यह एक सैर है, यह एक यात्रा है। हाँ, इससे यह गौ पथ भी नहीं बना, हम वहीं जाने वाले थे। हाँ, यह सही है, यह एक राजमार्ग है। यह सही है। और इसे क्या कहा जाएगा? पवित्रता का मार्ग, भगवान का तरीका, उनके चरित्र में एक रास्ता, उसके जीवन में एक रास्ता। मुक्ति कोई चीज नहीं है, मुक्ति एक रिश्ता है, और पवित्र व्यक्ति द्वारा छुटकारा पाने के लिए उस चरित्र को साझा करना आवश्यक है। मुझे पद 8 का अंतिम कथन हमेशा पसंद आता है। यहां तक कि एक मूर्ख भी वहां चल सकता है और गिर नहीं सकता, वो अच्छी खबर है। यह हम में से बहुतों को आशा देता है। यह सही है, लेकिन यह सहज है, यह सीधा है। कोई चक छेद नहीं है, न सिंह न हिंसक पशु, परंतु छुड़ाए हुए लोग वहां चलेंगे। हां हां, अब ये लोग कौन हैं? पद 10। प्रभु का छुड़ाया हुआ। यहां यह फिर से है, यहां से पूरे रास्ते भगवान कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास करो। और लोगों की सहज प्रतिक्रिया है, नहीं नहीं, हम राष्ट्रों पर भरोसा करेंगे, हम सबसे बुरे दुश्मनों पर भरोसा करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया है और जब उन्होंने परिणाम प्राप्त किया है, तो क्या भगवान कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा है? आशा करते हैं कि आपको आनंद आया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्रिय, अब जब हम उस गड्ढे में गिर गए हैं जिसे हमने अपने हाथों से खोदा है और उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है, तो वह गड्ढे में उतरने और हमें वापस खरीदने के लिए आता है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। जब हम अपनी दुनिया को जंगल में बदल देते हैं, तो वह आता है। यदि हम उसे उस जंगल को एक बगीचे में बदलने देंगे, क्या हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए? ओ हां, हमें शुरू से ही उस पर भरोसा करना चाहिए था। और अब जब वह हमारे पास आता है, हमारे सब कुछ बर्बाद करने के बाद और फिर से खुद को पेश करता है, तो यह उस पर भरोसा करने का दोहरा कारण है। वे गाते हुए सियोन में आएंगे, उनके सिर पर अनंत आनंद रहेगा, उन्हें खुशी और आनंद प्राप्त होगा, दुख और आह दूर हो जाएंगे। जॉन, क्या यह कहना इतना आसान है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है? या यह बस इतना ही है? यह उतना ही सरल है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, और उसने हमें प्रेम के लिए बनाया है, उसने हमें अपनी प्यारी संतान बनाया, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सृजन में उसका उद्देश्य ही विफल हो गया है। इसलिए वह अपने प्यार के लिए वस्तुओं को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और वह करेगा। तो आखिरकार हमें मानवता और मानव राष्ट्रों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हमने यहाँ 35 अध्याय पढ़ लिए हैं, तो अब मुझे कई उत्तर दीजिए, क्योंकि दुनिया अपने रास्ते पर है, क्योंकि दुनिया अपने रास्ते पर है। अच्छी बात है। दर्द और दुख, वे विश्वासघाती हैं। दुनिया तुम्हें धोखा देगी, यह बेकार है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। भगवान कहते हैं मत करो, वह बहुत बढ़िया है, उनके पास जवाब नहीं है। क्या होता है जब हम मानवता की प्रशंसा करते हैं? हमें अपमानित होना पड़ेगा। अध्याय 2 में यह सब यहीं से शुरू होता है। यदि आप मानवता को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो आपने ब्रह्मांड से कोई भी अर्थ छीन लिया है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसे ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता है, तो ब्रह्मांड बड़े संकट में है। आधुनिक दर्शन ठीक यहीं तक पहुंचा है, हमसे परे कुछ भी नहीं है, और हम एक गड़बड़ हैं। इसलिए जी भर के जियो, इंसानियत पर भरोसा मत करो। हमारे द्वारा फेंके गए शब्दों में से एक बेकार था। क्या ईश्वर की दृष्टि में मानवता बेकार है? नहीं, मानवता उसके बेटे की मृत्यु के लायक है। लेकिन यदि आप मानवता को सर्वोच्च बनाते हैं, तो आप स्वयं को बेकार बना देते हैं। भरोसा कैसा दिखता है और अविश्वास कैसा दिखता है? विश्वास क्रूस पर चढ़े मसीह जैसा दिखता है। प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब प्रभु की प्रतीक्षा करने में क्या शामिल है? आज्ञाकारिता, वही करना जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। और क्या? उसकी बात चाह रहा हूं। मैंने विश्वास सुना। यदि मैं किसी समस्या का सामना कर रहा हूं और मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, तो मैं क्या करने से इनकार कर रहा हूं? अपनी इच्छा से कार्य करूंगा। मैं भगवान के आगे चलने से इनकार कर रहा हूं, और यह हम इंसानों के लिए बहुत कठिन है, विशेषकर हम अमेरिकी। कर सकता है, और भगवान में कहने का साहस है, बैठो और प्रतीक्षा करो। असुरक्षित होना भी कठिन है, असुरक्षित होना कठिन है। हाँ, और भरोसा ऐसा ही दिखता है। भरोसा असुरक्षा की तरह दिखता है। अविश्वास कैसा दिखता है? गर्व, मैं खुद कर लूंगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्वार्थ, चिंता, आज्ञा का उल्लंघन। मेरे सभी विकल्पों को देखें और सर्वोत्तम विकल्प चुनें। हाँ, अधीरता, चीन की एक दुकान में एक बैल की तस्वीर, चीन की एक दुकान में एक बैल। हाँ, अगर मैं इंतजार करने से इनकार करता हूँ, अगर मैं भरोसा करने से इनकार करता हूँ, तो मैं अपने तरीके, अपनी टाइमिंग, अपनी समझ, अपनी क्षमता को सबसे ऊपर रख रहा हूँ। और यशायाह कहता है कि वह मार्ग जंगल है, उस रास्ते पर मौत निहित है। उस मार्ग में अस्वच्छता निहित है। उस रास्ते पर अंधेरा है। उस रास्ते पर एक बगीचा है, लेकिन यह डरावना है। कहो, मैं उसका मार्ग कैसे जानूं? इतना आसान नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका समय आ गया है? इतना आसान नहीं। मैं परिस्थितियों के बारे में उसकी समझ को कैसे जान सकता हूं? खैर, यह थोड़ा आसान है, लेकिन यह अभी भी है, यह एक बड़ी जटिल पुस्तक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यह उसकी क्षमता से कर रहा हूं, अपनी क्षमता से नहीं? ये आसान उत्तर नहीं है। जैसा कि मैरी जो ने कहा, उस विश्वास का मतलब है कि आप हमेशा यह देखने में सक्षम नहीं होते कि दो और दो कैसे फिट होते हैं। वे होंगे, वे करते हैं, लेकिन यह लगातार उसकी ओर देखने की बात है, और यह एक प्रतिक्रिया है जिसे सीखना होगा। ठीक है, अगले सप्ताह हम फिर से परीक्षा देना शुरू करेंगे। 2 सप्ताह सर। धन्यवाद, धन्यवाद। 2 सप्ताह। जब हम विश्वास पर इन पाठों के अंत में पहुंचते हैं तो प्रश्न या टिप्पणियां। मैं अधिनियम 1 और 2 को देखने के बाद बस यही सोच रहा था। अधिनियम 1 और 2, और जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, मसीह ने उनके लिए बुलाया है। हाँ, अधिनियम 1 और 2, आप मेरे गवाह हैं। वहां जीतने के लिए एक दुनिया है, पर रुको, कोई आदमी नहीं। हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने हमेशा सोचा है कि जब वे यरूशलेम वापस आए तो पीटर ने शायद मुख्य भाषण दिया होगा। मुझे लगता है कि शायद यह कुछ इस तरह हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ एक बहुत बड़ा काम करना है। हम में से बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें, अगर हम सब एक साथ काम करें, अगर हम सब मिलकर काम करें, अगर हम सब सचमुच अपने कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो हम यह काम कर सकते हैं। इसलिए मैं हर किसी को वहां देखना चाहता हूं और काम करना चाहता हूं। और कोई कहता है, पीटर, क्या हमें इंतजार करना चाहिए? ओह आदमी! और लगभग 10 दिन बाद किसी ने प्रार्थना की जो इस प्रकार थी, प्रभु यीशु, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम में से 120 दुनिया जीतेंगे। तुम्हें मजाक करना होगा, लेकिन यदि आप यही करना चाहते हैं तो हम उपलब्ध हैं। और आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से हमारा उपयोग कर सकते हैं। और तभी जॉन उछल पड़ा और बोला, पीटर, तुम्हारे सिर में आग लगी हुई है। जॉन, क्या यह भी नहीं है कि हमारे पास एक वास्तविकता है कि हम प्रतीक्षा करते समय अपने जीवन काल में उत्तर नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा करना होगा। एकदम सही। और यही यशायाह का मामला था। यशायाह ने निश्चित रूप से अपने जीवन काल में इसका उत्तर नहीं देखा। भगवान कहते हैं कि इसका उत्तर 150 वर्ष भविष्य में छिपा है। वाह, लेकिन यह वहां है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ हफ्ते में मिलेंगे। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 17, यशायाह अध्याय 34 और 35 है।